एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, कभी कभी शायद उलझते भी हैं, और जिस पर विज्ञान ने, सच कहूं तो, काफी दिलचस्प रोशनी डाली है।
हाँ, ये विषय है मानव बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंस।
बिल्कुल। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे इयान जे डियरी, जो इस फील्ड के, आप कह सकते हैं, बहुत बड़े नाम हैं। हम उनकी दो खास किताबों, इंटेलिजेंस अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और इंटेलिजेंस से मिली जो जानकारी है उसका निचोड़ आपके सामने रखेंगे।
और ये समझना आज जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, बुद्धि की बात है, पर आज क्यों?
देखिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि बुद्धि सिर्फ अकादमिक चर्चा का विषय नहीं है। जैसा कि हम आज देखेंगे, ये हमारी पढ़ाई से, हमारी नौकरी से, हमारी सेहत
से भी,
हाँ हाँ, सेहत से, और यहाँ तक कि हम कितना लंबा जिएंगे, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है।
अच्छा, ये तो वाकई थोड़ा पेचीदा लगता है, पर दिलचस्प भी। तो चलिए इस गांठ को खोलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान हमें बुद्धि के बारे में क्या सिखाता है।
हाँ, तो शुरुआत करते हैं लेखक से। इयान जे डियरी आखिर हैं कौन?
हाँ, बताइए जरा इनके बारे में।
ये स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में डिफरेंशियल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। साथ ही वो संज्ञानात्मक वृद्धावस्था और संज्ञानात्मक महामारी विज्ञान केंद्र के निदेशक भी हैं।
बाप रे, ये तो भारी भरकम नाम है। आसान शब्दों में क्या मतलब हुआ इसका?
आसान शब्दों में वो इस बात के एक्सपर्ट हैं कि लोगों की सोचने समझने की क्षमताएं एक दूसरे से अलग क्यों होती हैं, उम्र के साथ ये कैसे बदलती हैं, और इनका हमारी सेहत से क्या कनेक्शन है।
अच्छा, पर उनकी सबसे खास बात क्या है? मतलब ऐसा क्या है जो उन्हें इस विषय पर बात करने के लिए इतना अहम बनाता है?
वो है उनका लोथियन बर्थ कोहॉर्ट्स नाम का एक अद्भुत, मतलब कमाल का अध्ययन।
लोथियन बर्थ कोहॉर्ट्स, ये क्या है?
जरा सोचिए, उन्होंने उन लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने 1932 और 1947 में, जब वे सिर्फ 11 साल के थे, स्कॉटलैंड में एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था।
अच्छा, इतने पुराने लोग?
हाँ, और डियरी और उनकी टीम ने इन लोगों को बुढ़ापे में फिर से खोजा, फिर से टेस्ट किया, उनकी सेहत, उनके जीन्स और उनकी पूरी जिंदगी के बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठा की।
अरे वाह, इसका मतलब उनके पास सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि दशकों लंबे असली डेटा का खजाना है। वो देख पाए हैं कि बचपन की बुद्धि का असर पूरी जिंदगी कैसे रहता है। कमाल है।
बिल्कुल सही, यही बात उनके काम को खास बनाती है। वो सिर्फ अटकलों या सुने सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और आंकड़ों पर अपनी बात रखते हैं।
हाँ, ये जरूरी है।
हाँ, इसलिए बुद्धि जैसे थोड़े संवेदनशील विषय को समझने के लिए उनका नजरिया बहुत भरोसेमंद है।
तो डेरी की ये किताबें हमें क्या सिखाना चाहती हैं? इनका मूल मकसद क्या है?
देखिए, ये किताबें असल में आम पाठक के लिए लिखी गई हैं। एक तरह से गाइड हैं जो हमें विज्ञान की नज़र से समझाती हैं कि बुद्धि आखिर है क्या भला, इसे मापा कैसे जाता है, ये आती कहाँ से है, मतलब इसमें हमारे जीन्स और हमारे माहौल का कितना हाथ है, और सबसे बड़ी बात, हमारी जिंदगी के अहम पड़ावों पर, जैसे पढ़ाई, नौकरी, सेहत, इस पर इसका इतना गहरा असर क्यों पड़ता है?
मतलब ये सिर्फ IQ टेस्ट के स्कोर के बारे में नहीं है, बल्कि बुद्धि के पूरे ताने बाने को, उसके पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश है।
हाँ बिल्कुल, डियरी बहुत सलीके से बुद्धि से जुड़े आम मिथकों को तोड़ते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं, क्या बुद्धि सिर्फ एक चीज है? क्या इसे बदला जा सकता है? क्या IQ टेस्ट बेकार हैं?
हाँ, ये सवाल तो आते हैं मन में।
बिल्कुल, वो इन सवालों का जवाब पिछले 100 सालों में जमा हुए वैज्ञानिक सबूत, साइकोमेट्रिक टेस्ट, जेनेटिक स्टडीज और स्वास्थ्य से जुड़े अध्ययनों के आधार पर देते हैं। उनका मुख्य तर्क ये है कि बुद्धि कोई हवा हवाई चीज नहीं, बल्कि एक वास्तविक, मापने योग्य मनोवैज्ञानिक गुण है।
अच्छा, मतलब इसे मापा जा सकता है।
हाँ, जिसके जैविक आधार भी हैं और जो जिंदगी में मिलने वाली सफलता या चुनौतियों का काफी हद तक अंदाजा भी दे सकती है।
तो ये हमें एक सफर पर ले जाती हैं, बुद्धि को परिभाषित करने से लेकर उसे मापने तक, जैसे IQ और वो जी फैक्टर आपने कहा।
हाँ, जी फैक्टर, फिर उसकी बनावट को समझने, जैसे वो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है, उसके पीछे का जीव विज्ञान, मतलब जीन, दिमाग, फिर ये देखना कि वो जिंदगी भर कितनी बदलती है, और आखिर में उसके असली दुनिया के नतीजे क्या हैं, पढ़ाई, नौकरी, सेहत पे असर।
ठीक है, चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? सबसे बुनियादी सवाल से, बुद्धि है क्या?
हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से बुद्धि है क्या? डीरी हमें बताते हैं कि इसकी जड़ें 20वीं सदी के शुरुआती दौर के एक मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन के काम में है।
स्पीयरमैन?
हाँ, स्पीयरमैन ने एक बड़ी दिलचस्प बात नोट की। जो लोग एक तरह के दिमागी काम में अच्छे होते हैं, मान लीजिए शब्द ज्ञान में, वे अक्सर दूसरे बिल्कुल अलग लगने वाले कामों में भी अच्छे होते हैं, जैसे पहेलियां सुलझाना या गणित के सवाल हल करना।
अच्छा।
मतलब ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ मैथ्स में अच्छा है और बाकी सब में जीरो। आमतौर पर दिमागी कामों में प्रदर्शन एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसी पैटर्न को देखकर स्पीयरमैन ने जी फैक्टर यानी सामान्य मानसिक क्षमता का कॉन्सेप्ट दिया।
जी फैक्टर?
हाँ, जी फैक्टर एक तरह की बुनियादी दिमागी ताकत या आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग पावर है, जो हर तरह के सोचने समझने वाले काम में जरूरी होती है। जो आईक्यू टेस्ट होते हैं वो असल में इसी जी फैक्टर को मापने की कोशिश करते हैं।
और ये आईक्यू स्कोर जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं, इतनी चर्चा होती है, वो क्या है फिर?
देखिए, आईक्यू स्कोर कोई मीटर या वजन की तरह कोई फिक्स माप नहीं है। ये बस ये बताता है कि किसी व्यक्ति की दिमागी क्षमता उसकी उम्र के बाकी लोगों की तुलना में कैसी है। एक औसत आईक्यू 100 माना जाता है और ज्यादातर लोगों का स्कोर इसके आसपास ही होता है।
अच्छा।
एक दिलचस्प बात यह भी है जो शायद कम लोग जानते हैं कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिनेट ने बच्चों पर होशियार या कमजोर का ठप्पा लगाने के लिए नहीं बनाया था।
तो फिर क्यों बनाया था?
उन्होंने फ्रांस में उन बच्चों की पहचान करने के लिए बनाया था जिन्हें स्कूल में शायद थोड़ी ज्यादा मदद की जरूरत हो सकती है। मकसद लेबल लगाना नहीं, मदद करना था।
ये जानना जरूरी है। तो जी फैक्टर सबसे ऊपर है, लेकिन क्या बुद्धि सिर्फ इसी एक चीज का नाम है या इसके और भी पहलू हैं? कुछ और पढ़ते हैं।
हाँ, स्पीयरमैन के बाद के रिसर्च ने दिखाया कि जी फैक्टर सबसे ऊपर जरूर है, लेकिन उसके नीचे बुद्धि की और भी परतें हैं। डियरी दो खास तरह की क्षमताओं पर जोर देते हैं।
कौन सी दो?
एक है फ्लूइड इंटेलिजेंस, GF, तरल बुद्धि।
फ्लूइड मतलब तरल, पानी जैसा?
हाँ, एक तरह से। यह है आपकी नई चीजें सीखने, बिना पिछले अनुभव के तर्क करने, पैटर्न पहचानने और नई समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। इसे आप दिमाग की कच्ची प्रोसेसिंग पावर समझ सकते हैं।
जैसे कोई नई मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना सीखना या कोई एकदम अनोखी पहेली हल करना।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और दूसरी है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, GC, संचित बुद्धि।
क्रिस्टलाइज्ड मतलब जमा हुआ, ठोस?
हाँ, जमा हुआ ज्ञान। ये है वो सारा ज्ञान, तथ्य, शब्द भंडार और कौशल जो हम जिंदगी भर अपनी पढ़ाई और अनुभवों से सीखते और जमा करते जाते हैं। जैसे किसी देश की राजधानी का नाम जानना या किसी मुश्किल शब्द का मतलब समझना, ये सब क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है।
अच्छा, तो एक है नई चीजें सीखने की क्षमता और दूसरी है सीखा हुआ ज्ञान। इन दोनों में क्या कोई फर्क है कि ये उम्र के साथ कैसे बदलती हैं?
हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी नई चीजें सीखने और समस्या सुलझाने की जो रफ्तार है, वो आमतौर पर जवानी में, मतलब युवा वयस्कता में, अपने चरम पर होती है। और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी जमा किया हुआ ज्ञान, वो बुढ़ापे तक स्थिर रह सकता है, बल्कि सच कहूं तो बढ़ भी सकता है।
अरे वाह, मतलब ज्ञान बढ़ता रहता है?
हाँ, जैसे जैसे हम ज्यादा सीखते हैं और अनुभव करते हैं, हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ता जाता है। और हाँ, इन दो बड़ी क्षमताओं के नीचे और भी छोटी छोटी स्पेसिफिक योग्यताएं होती हैं, जैसे याददाश्त, बोलने की रवानगी, चीजों को मन में घुमाकर देखने की क्षमता वगैरह वगैरह।
ये तो हुई बुद्धि की बनावट की बात कि इसमें क्या क्या शामिल है, पर ये आती कहाँ से है? इसका हमारे शरीर, हमारे जीव विज्ञान से क्या लेना देना है? जीन्स का कितना रोल है इसमें? ये बड़ा सवाल है।
हाँ, ये बड़ा सवाल है और थोड़ा जटिल भी। यहाँ ढेरी अनुवंशिकता के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब ये है कि किसी आबादी में लोगों के आईक्यू स्कोर में जो अंतर होता है, उसका कितना प्रतिशत उनके जेनेटिक अंतरों की वजह से हो सकता है।
अच्छा, मतलब कितना हिस्सा जीन से आता है?
हाँ, मोटे तौर पर विकसित देशों में वयस्कों के लिए आंकड़ा 50% से 80% तक हो सकता है।
50 से 80%? ये तो बहुत ज्यादा लगता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास का माहौल, हमारी परवरिश, हमारी पढ़ाई लिखाई, इन सब का कोई खास असर नहीं होता? सब जीन्स ही तय करते हैं?
नहीं नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। 80% आनुवंशिकता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माहौल सिर्फ 20% ही मायने रखता है या कोशिश करना बेकार है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
तो फिर क्या मतलब है इसका?
सोचिए, ये एक बीज की तरह है। बीज में क्षमता है, वो हो गए जीन, पर उसे अच्छी मिट्टी, पानी, धूप चाहिए पनपने के लिए, वो हो गया माहौल।
हाँ,
जीन और माहौल एक दूसरे से लगातार बात करते हैं, वो गुंथे हुए हैं। बल्कि होता ये भी है कि जिन लोगों में जेनेटिक रूप से सीखने की क्षमता ज्यादा होती है वे अक्सर खुद ही ऐसा माहौल ढूंढ लेते हैं या बना लेते हैं जहां उन्हें सीखने के ज्यादा मौके मिले। इसे जीन पर्यावरण सह संबंध कहते हैं।
अच्छा, मतलब जीन हमें बेहतर माहौल चुनने में भी मदद कर सकते हैं।
एक तरह से हाँ। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर की बहस नहीं है, बल्कि ये नेचर और नर्चर की कहानी है। दोनों मिलकर काम करते हैं।
समझ गई। और दिमाग के बारे में क्या? क्या बड़े दिमाग का मतलब ज्यादा बुद्धि है? ये भी एक आम धारणा है।
दिमाग के आकार और बुद्धि के बीच एक हल्का सा, बहुत हल्का सा पॉजिटिव रिश्ता तो है, लेकिन डियरी बताते हैं कि आकार से ज्यादा जरूरी चीज दिमाग की कुशलता लगती है।
कुशलता मतलब?
मतलब ये कि ब्रेन स्कैन स्टडीज दिखाती हैं कि ज्यादा आईक्यू वाले लोग जब कोई दिमागी काम करते हैं तो उनके दिमाग के कुछ हिस्सों में कम एक्टिविटी होती है।
कम एक्टिविटी? ये तो उल्टा लग रहा है।
हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, पर इसका मतलब है कि उनके दिमाग उसी काम को कम ऊर्जा खर्च करके ज्यादा कुशलता से कर लेता है, जैसे एक कुशल कारीगर कम मेहनत में ज्यादा काम कर लेता है।
अच्छा, अब समझी।
साथ ही दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच जानकारी कितनी तेजी से जाती है, जिसे प्रोसेसिंग स्पीड कहते हैं, और उनके बीच के कनेक्शन, जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं, वो कितने अच्छे हैं, ये भी मायने रखता है।
ठीक है, अब उस चीज पर आते हैं जो डियरी के अपने रिसर्च का खास हिस्सा है, यानी जिंदगी घर बुद्धि कैसे बदलती है। आपने वो लोथियन कोहोर्ट्स का जिक्र किया था, उनसे क्या पता चला?
हाँ, और ये डियरी के काम का शायद सबसे चौंकाने वाला और मेरे लिए सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उन्होंने पाया कि बुद्धि में जबरदस्त रैंक ऑर्डर स्थिरता होती है।
रैंक ऑर्डर स्थिर पर, ये ध्यान है।
इसका आसान मतलब ये है कि अगर आप 11 साल की उम्र में अपनी क्लास के टॉप 10% बच्चों में थे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप 80 साल की उम्र में भी अपनी उम्र के लोगों में टॉप 10-15% में ही होंगे।
सच में?
हाँ, आपकी रैंक दूसरों की तुलना में जिंदगी भर काफी हद तक वैसी ही बनी रहती है।
अरे वाह, यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। मतलब 11 साल का टेस्ट स्कोर 80 साल की उम्र के स्तर का काफी हद तक अंदाजा दे सकता है। ये तो मनोविज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज लगती है।
बिल्कुल, ये मनोविज्ञान की सबसे पुख्ता और स्थापित खोजों में से एक है। ये दिखाता है कि बुद्धि इंसान का एक बहुत टिकाऊ, बहुत स्थिर गुण है।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बुद्धि बिल्कुल पत्थर की लकीर है और बदलती ही नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थिरता का मतलब शून्य बदलाव नहीं है। जैसा हमने पहले बात की, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज क्षमताएं उम्र के साथ अलग अलग रास्ते लेती हैं, और लोगों के औसत स्कोर भी समय के साथ बदल सकते हैं, जैसे फ्लिन प्रभाव में देखा गया। लेकिन एक व्यक्ति की अपने साथियों के तुलना में जो सापेक्ष स्थिति है वो काफी स्थिर रहती है।
अच्छा,
डियरी का रिसर्च ये भी देखता है कि कुछ लोगों की सोचने समझने की क्षमता बुढ़ापे में दूसरों से बेहतर क्यों बनी रहती है। इसे सफल संज्ञानात्मक उम्र बढ़ना कहते हैं। इस पर भी वो काम करते हैं।
ठीक है, मान लिया कि बुद्धि स्थिर है, इसे माप सकते हैं, जीन्स और माहौल दोनों का रोल है। पर सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? सो वॉट? बुद्धि मापने का या इसके बारे में जानने का आखिर फायदा क्या है?
बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर डियरी आईक्यू स्कोर की भविष्य बताने की ताकत पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि आईक्यू स्कोर जिंदगी के कई अहम नतीजों का काफी अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। कोई गारंटी नहीं, पर एक अनुमान जरूर।
जैसे कि?
जैसे पढ़ाई लिखाई में सफलता, कितने साल तक कोई पढ़ाई जारी रखेगा, कॉलेज में कैसा प्रदर्शन करेगा, इसमें आईक्यू का काफी रोल देखा गया है। फिर नौकरी और करियर में, ज्यादा मुश्किल और सम्मानित नौकरियां पाने की संभावना ज्यादा होती है जिनका आईक्यू ज्यादा होता है। और नौकरी में प्रदर्शन कैसा रहेगा, खासकर उन नौकरियों में जिनमें लगातार सीखना और समस्याएं सुलझाना पड़ता है, उसमें भी आईक्यू एक महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता है।
और सामाजिक स्तर पर भी कुछ असर होता है?
हाँ, कुछ हद तक। जैसे कि समाज में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की क्षमता, और कुछ अध्ययनों में अपराध से दूरी बनाए रखने की प्रवृत्ति से भी इसका हल्का संबंध देखा गया है।
और वो सबसे हैरान करने वाली बात, सेहत और उम्र, आपने शुरू में जिक्र किया था।
हाँ, यह है संज्ञानात्मक महामारी विज्ञान, कॉग्निटिव एपिडेमियोलॉजी का क्षेत्र, जिसमें डियरी ने बहुत काम किया है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये वाकई चौंकाने वाला है।
क्या पता चला है इसमें?
उनके लोथियन स्टडीज और दूसरे कई अध्ययनों से ये बार बार पता चला है कि बचपन में जिनका आईक्यू स्कोर ज्यादा था, वे औसतन ज्यादा लंबा और ज्यादा स्वस्थ जीवन जीते हैं।
ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन आईक्यू स्कोर से?
हाँ, उनमें दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और कुछ तरह के कैंसर का खतरा कम पाया गया है। दुर्घटनाओं से मौत का खतरा भी कम होता है।
लेकिन ऐसा क्यों? दिमाग की तेजी का सीधा ताल्लुक सेहत और लंबी उम्र से कैसे हो सकता है? ये कनेक्शन समझ नहीं आया।
इसके पीछे शायद कोई एक कारण नहीं, कई कारण मिलकर काम करते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ज्यादा आईक्यू वाले लोग सेहत से जुड़ी जानकारी बेहतर समझ पाते हैं, जैसे डॉक्टर की सलाह, दवाइयों के निर्देश, सेहतमंद खाने पीने की जानकारी।
हाँ, ये तो हो सकता है।
वे शायद सेहतमंद आदतें अपनाने की ज्यादा संभावना रखते हैं, जैसे सिगरेट ना पीना, कसरत करना, वजन कंट्रोल में रखना।
अच्छा।
उन्हें अक्सर बेहतर नौकरियां मिलती हैं जहां काम का माहौल ज्यादा सुरक्षित होता है, तनाव कम होता है और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होती है। वे शायद अपनी देखभाल बेहतर ढंग से कर पाते हैं, लक्षणों को जल्दी पहचान लेते हैं, इलाज करवाते हैं।
मतलब ये कई चीजों का मिला जुला असर है।
हाँ, तो ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं बल्कि ये दिखाता है कि बुद्धि शायद हमारे पूरे शरीर के सिस्टम के कितने अच्छे से काम कर रहा है, उसकी ओवरऑल फिटनेस या अखंडता का एक इशारा है। एक स्वस्थ दिमाग शायद एक स्वस्थ शरीर का ही हिस्सा है।
ये एक अलग ही नजरिया है। जेरी अपनी किताबों में कुछ पहेलियों और विवादों पर भी बात करते हैं ना, कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर काफी बहस होती है।
हाँ, आखिर में वे कुछ ऐसे मुद्दों को छूते हैं जो अक्सर चर्चा और कभी कभी विवाद का विषय बनते हैं। एक है फ्लिन प्रभाव।
फ्लिन प्रभाव, ये क्या चीज है?
ये एक बहुत ही दिलचस्प खोज है। हुआ ये कि पिछली एक सदी के दौरान दुनिया भर में पीढ़ी दर पीढ़ी औसत आईक्यू स्कोर लगातार बढ़ते गए हैं।
बढ़ते गए हैं, मतलब हम ज्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं।
औसतन, हाँ, मतलब आज का औसत इंसान अगर 50-60 साल पहले का आईक्यू टेस्ट दे तो वो उस जमाने के औसत इंसान से कहीं ज्यादा स्कोर करेगा। ये बढ़त करीब 3 आईक्यू पॉइंट प्रति दशक की रही है।
अरे, तो क्या हम जेनेटिकली ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं?
नहीं, वैज्ञानिक मानते हैं कि इतने कम समय में, सिर्फ कुछ पीढ़ियों में, इतना बड़ा जेनेटिक बदलाव नहीं हो सकता। इसका कारण हमारे माहौल में हुए बदलावों को माना जाता है।
जैसे कि?
जैसे बेहतर पोषण, ज्यादा और अच्छी स्कूली शिक्षा, समाज के ज्यादा जटिल हो जाना जिसमें सोचने समझने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, शायद टेस्ट देने का बढ़ता अनुभव। सही कारण क्या है इस पर अभी भी बहस है, पर यह लगभग तय है कि माहौल का इसमें बड़ा रोल है।
अच्छा, और एक और संवेदनशील मुद्दा, अलग अलग समूहों के बीच औसत आईक्यू स्कोर में अंतर, इस पर भी वो बात करते हैं।
वाह, और डेरी इस पर बहुत सावधानी से और पूरी तरह वैज्ञानिक नजरिए से बात करते हैं। वो मानते हैं कि आंकड़ों में अलग अलग नस्लीय या सामाजिक समूहों के बीच औसत स्कोर में अंतर दिखते हैं, ये एक फैक्ट है। लेकिन वो जोर देकर कहते हैं कि इन अंतरों के कारण बेहद जटिल हैं और इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक भेदभाव, पोषण, स्वास्थ्य और शायद कुछ जेनेटिक कारकों का भी मिला जुला असर हो सकता है। इन कारणों को अलग करना बहुत मुश्किल है।
तो निष्कर्ष क्या है?
सबसे जरूरी बात, वो कहते हैं कि किसी समूह का औसत स्कोर उस समूह के किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताता। हर समूह में बहुत विविधता होती है और इसे कभी भी किसी भी हालत में भेदभाव या पूर्वाग्रह का आधार नहीं बनाना चाहिए। यहां ये सवाल उठता है कि हम इन वैज्ञानिक तथ्यों को जिम्मेदारी से कैसे समझें और कैसे इस्तेमाल करें बिना गलत मतलब निकाले।
ये संतुलन बनाना जरूरी है। और आखिरी पहेली, क्या हम कोशिश करके खुद को ज्यादा बुद्धिमान बना सकते हैं? क्या कोई ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स या खास डाइट वगैरह काम करती हैं? आजकल बहुत चलन है इनका।
हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। डेरी का निष्कर्ष इस मामले में थोड़ा, कह सकते हैं, निराशाजनक है।
अच्छा।
वे कहते हैं कि हाँ, पढ़ाई लिखाई से, नई चीजें सीखने से हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जो जमा हुआ ज्ञान है, वो जरूर बढ़ती है। और एक सेहतमंद जीवन शैली जैसे अच्छी नींद, कसरत, सही खान पान, ये दिमाग को अच्छा काम करने में मदद करती है।
लेकिन
हमारी बुनियादी फ्लूइड इंटेलिजेंस, जो नई चीजें सीखने की कच्ची क्षमता है, को स्थायी रूप से बढ़ाने का कोई पक्का जादुई तरीका फिलहाल विज्ञान को नहीं मिला है। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स,
हाँ,
वो आपको नहीं, खास गेम्स या पहेलियों में बेहतर बनाते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करते हैं। इसका फायदा आमतौर पर जिंदगी के दूसरे दिमागी कामों में ट्रांसफर नहीं होता। मतलब आप गेम में अच्छे हो जाएंगे, जरूरी नहीं कि आप असल जिंदगी की समस्याएं सुलझाने में बेहतर हो जाएं।
मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है
फिलहाल, तो नहीं लगता। शिक्षा और लगातार सीखते रहना ही सबसे अच्छा तरीका है अपनी क्षमताओं को निखारने का।
तो अगर हम आज के इस पूरे गहरी बातचीत का सार निकाले, तो वो मुख्य बातें क्या होंगी जो हमें डेरी के काम से, इन किताबों से मिलती हैं?
मेरे हिसाब से पहली और शायद सबसे बड़ी बात ये है कि बुद्धि कोई मनगढ़ंत चीज नहीं, बल्कि एक वास्तविक, मापने योग्य वैज्ञानिक हकीकत है। ये जो जी फैक्टर है जिसकी हमने बात की, ये मनोविज्ञान की एक ठोस, बार बार साबित हुई खोज है।
ठीक है, दूसरी
बात, ये जी फैक्टर बहुत अहम है। हमारी लगभग सभी दिमागी क्षमताएं आपस में जुड़ी हुई हैं, ये बुद्धि अनुसंधान का आधार है।
और तीसरी बात जो आपने जोर देकर कही थी, प्रकृति और पोषण, यानी जीन्स और माहौल दोनों जरूरी हैं और एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। ये या वाली बात नहीं, और वाली बात है। सिर्फ जीन्स या सिर्फ माहौल से पूरी कहानी नहीं बनती।
बिल्कुल। चौथी बात जो बहुत चौंकाने वाली है, बुद्धि जिंदगी भर आश्चर्यजनक रूप से स्थिर रहती है, कम से कम दूसरों के तुलना में हमारी रैंक के मामले में।
हाँ, ये तो है। यहाँ मामला वाकई और भी दिलचस्प हो जाता है।
पांचवीं, बुद्धि के नतीजे बहुत मायने रखते हैं। इसका असर हमारी पढ़ाई, नौकरी और यहाँ तक की सेहत पर भी पड़ता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। छठी, संज्ञानात्मक महामारी विज्ञान की खोज कि बचपन की बुद्धि का संबंध लंबी और सेहतमंद जिंदगी से है, ये मन और शरीर के गहरे रिश्ते को उजागर करता है।
और सातवीं
जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, डियर पिंजी हमेशा विज्ञान को विचारधारा या राजनीति से अलग रखने की बात करते हैं। तथ्यों को वैसे ही देखना जैसे वे हैं, चाहे वो हमें पसंद आए या ना आए।
भारत के संदर्भ में सोचें तो ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे शिक्षा के अवसरों में जो इतनी असमानता है, या अलग अलग सामाजिक आर्थिक तबकों तक स्वास्थ्य जानकारी पहुंचने में जो अंतर है।
हाँ,
इन सब का असर कैसे बच्चों के दिमागी विकास और आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी के नतीजों पर पड़ सकता है।
सही कहा, ये मुद्दे यहाँ बहुत प्रासंगिक है। अब कुछ ऐसे विचारों पर नजर डालते हैं जो डीडी की किताबों में बार बार आते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। आप इन्हें कोटेशन जैसा समझ सकती हैं, पर ये उनके मुख्य विचार हैं।
हाँ, बताइए।
पहला, मनोविज्ञान की सबसे पक्की खोजों में से एक ये है कि बुद्धि का एक सामान्य कारक जी होता है, जो बताता है कि क्यों जो लोग एक दिमागी काम में अच्छे होते हैं वे अक्सर बाकी सब में भी अच्छे होते हैं। इसका मतलब साफ है, जी फैक्टरी बुनियाद है।
दूसरा,
किसी व्यक्ति की बुद्धि की रैंक बचपन से बुढ़ापे तक कमाल की हद तक स्थिर रहती है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जो मौसम की तरह बदलती रहे। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि 11 साल की उम्र का टेस्ट 80 साल की उम्र का अंदाजा कैसे दे सकता है। ये स्थिरता कमाल की।
हाँ, ये बात वाकई चौंकाती है। और तीसरा,
आप कितना लंबा जिएंगे इसका कुछ हद तक अंदाजा आपके बचपन के इंटेलिजेंस स्कोर से लगाया जा सकता है। एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर से जुड़ा है। ये बुद्धि को सिर्फ दिमाग की कसरत न मानकर पूरे शरीर के स्वास्थ्य से जोड़ता है।
ये तो हुई वैज्ञानिक बातें, सिद्धांत, पर इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? हम इन विचारों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल?
हाँ, बिल्कुल। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो अपनी ताकत और कमजोरी को समझना मददगार हो सकता है। क्या आप नई चीजें जल्दी सीखते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस में अच्छे हैं, या आपके पास ज्ञान और अनुभव का भंडार ज्यादा है? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आपकी ताकत है। इसे समझकर आप अपने करियर या पढ़ाई के तरीके चुन सकते हैं। जैसे कोई उम्रदराज व्यक्ति ये समझ सकता है कि भले ही नई टेक्नोलॉजी सीखने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगे, पर उनका सालों का अनुभव और ज्ञान उन्हें किसी भी युवा से ज्यादा योग्य बना सकता है कई कामों के लिए।
और बच्चों की परवरिश या शिक्षा में इसका क्या मतलब है?
ये हमें सिखाता है कि हर बच्चा अलग है। हमें सिर्फ स्मार्ट या नॉट स्मार्ट का लेबल लगाने की बजाय उनकी अपनी खासियतों को पहचानना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। कोई बच्चा शायद मैथ्स में तेज ना हो, पर उसकी भाषा पर पकड़ कमाल की हो सकती है, या वो चीजों को अलग तरह से देख पाता हो।
सही बात है।
और सबसे जरूरी, उन्हें एक ऐसा माहौल देना जहां उन्हें सीखने, सवाल पूछने, गलतियां करने और अपनी क्षमता को निखारने का भरपूर मौका मिले। एक सपोर्टिव और स्टिमुलेटिंग माहौल।
नौकरी पेशे की दुनिया में भी ये बातें काम की हैं, जैसा आपने पहले कहा।
हाँ, ये समझाता है कि क्यों कंपनियां अक्सर मुश्किल भूमिकाओं के लिए ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जिनमें सीखने और समस्या सुलझाने की अच्छी क्षमता हो, यानी अच्छी जी या फ्लूइड क्षमता। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सिर्फ पुरानी जानकारी काफी नहीं है, नई चीजें सीखते रहने की काबिलियत, अडैप्ट करने की क्षमता बहुत कीमती है।
और अगर बड़े पैमाने पर देखें, समाज के स्तर पर,
समाज और स्वास्थ्य नीतियों के लिए भी इसके मायने हैं। अगर बचपन का कम आईक्यू आगे चलकर खराब सेहत का खतरा बढ़ाता है तो ये एक पब्लिक हेल्थ का मुद्दा भी बन जाता है।
कैसे?
इसका मतलब है कि बचपन में अच्छा पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और अच्छी शिक्षा देना सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय में पूरे समाज के स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ को कम करने के लिए भी जरूरी हो जाता है। ये एक तरह का निवेश है।
और ये हमें शिक्षा या समाज में बराबरी जैसे मुद्दों पर ज्यादा जानकारी के साथ, शायद कम भावनाओं के साथ बात करने में मदद करता है, मिथकों से हटकर।
बिल्कुल, तथ्यों के आधार पर बहस हो सकती है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी गहरी चर्चा के अंत में आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही इस सब में से?
मेरे लिए सच कहूं तो सबसे ज्यादा असरदार दो बातें थीं। एक तो बुद्धि की ये स्थिरता वाली बात, ये सोचना ही कमाल है कि बचपन की क्षमता का असर इतनी दूर तक बुढ़ापे तक रहता है, ये वाकई अकल्पनीय सा लगता है।
हाँ,
और दूसरा, इसका हमारी शारीरिक सेहत से इतना गहरा कनेक्शन, ये जानना कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का औजार नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य का एक तरह का आईना भी हो सकता है, ये वाकई आंखें खोलने वाला था।
और मेरे लिए ये समझना कि जीन्स और माहौल किस तरह एक जटिल नृत्य में बंधे हैं, कोई एक दूसरे से बढ़कर नहीं बल्कि दोनों साथ में काम करते हैं, और ये कि इस विषय का वैज्ञानिक अध्ययन कितना जरूरी है बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना डरे।
हाँ,
ये सिर्फ होशियार होने या न होने की बात नहीं है जैसा लोग समझते हैं, बल्कि ये इंसानी विविधता के एक बुनियादी पहलू को समझने की बात है जिसके नतीजे हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ते हैं। और हाँ, ये जानना कि शुरुआती सालों का अनुभव, वो माहौल कितना मायने रखता है, ये भी एक बड़ी सीख थी।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्स खतर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।